बीबीसी इंडिया बोल तारीख 14 अक्टूबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। इस फैसले की वजह बढ़ता हुआ ध्वनि और वायु प्रदूषण। क्या पटाखों पर पाबंदी लगाने से प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी? सवाल ये भी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। इराकी सरकार से जुड़ी शिया सेना और कुर्दिश पेशमर्गा सेनाओं ने किरकुक शहर के पास दोनों के बीच हुई झड़प के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताया है। वह झड़प अब खत्म हो गई है, पर बीबीसी संवाददाता ने कहा है कि इलाके में अब भी तनाव है। पिछले महीने हुए कुर्दिश जनमत संग्रह ने आज़ादी का पक्ष लिया था। इराकी सरकार ने इस जनमत संग्रह को अवैध बताया था। अब तक इराकी सेना और कुर्द लड़ाके एक साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार के ब्रिटेन में प्रतिनिधि कारवां ताहिर ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
बहुत तनाव की स्थिति है। बीती रात दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई, लेकिन उससे तुरंत निपटा गया। प्रधानमंत्री आब्दी ने 6 बिंदुओं वाली मांग रखी है और कुर्दिस्तान नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है। हमारे पास उस पर जवाब देने के लिए 30 घंटे का समय है। ये थे कुर्दिस्तान के स्थानीय सरकार के ब्रिटेन में प्रतिनिधि कारवां ताहिर के शब्द। कैतलन सरकार के उपनेता ने कहा है कि कैतलन लोगों ने उनकी पार्टी को स्वतंत्र गणराज्य के लिए जनादेश दिया है और पार्टी इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ओरियोल जंक्यूरास ने अपनी कैतलन लेफ्ट पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह काम संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पेन की सरकार बात करने से इनकार करती रही और मध्यस्थता के प्रस्ताव को भी खारिज करती रही। स्पेन ने कैतलन नेता कार्लस पुजीमोंट को यह साफ करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है कि उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया है या नहीं। वहीं ओरियोल जंक्यूरास ने कहा, हम आधिकारिक तौर पर कैतलन सरकार के प्रमुख को जनादेश पूरा करने के लिए अपना समर्थन दोहराना चाहते हैं, खासतौर से 1 अक्टूबर के संबंध में जब वह जनमत संग्रह हुआ, ताकि कैतलन को स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। ये थे ओरियल जंक्यूरास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के अगुवाई वाली गठबंधन सेना, जिसने उत्तर सीरिया के रक्का शहर में घेराबंदी की हुई है, ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहे विदेशी लड़ाकों को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गठबंधन ने कहा है कि आने वाले दिनों में रक्का को पूरी तरह आज़ाद कराने से पहले वहां भीषण लड़ाई हो सकती है। यह शहर कभी इस्लामिक स्टेट की राजधानी कहा जाता था। जानकारों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के वफादार सीरियाई लोग एक समझौते के तहत वहां से बस लेकर जा चुके हैं। रक्का से आ रही खबरों के मुताबिक स्थानीय अधिकारी वहां नागरिकों को और लड़ाई से बचाना चाहते हैं और वे ऐसे समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत विदेशी लड़ाकों को वहां से जाने दिया जाए। पाकिस्तान में तालिबान से जुड़े संगठन हक्कानी नेटवर्क के चंगुल से छुड़ाए गए कनाडाई नागरिक जोशुआ बोयल ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि चरमपंथियों ने उनके एक बच्चे की हत्या कर दी और उनकी पत्नी से बलात्कार किया। जोशुआ अपनी पत्नी कैटलिन कोलमैन और 3 बच्चों के साथ शुक्रवार रात टोरंटो पहुँचे। 2012 में उन्हें हक्कानी नेटवर्क ने अगवा कर लिया था, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। चरमपंथियों की ओर से बंधक बनाए जाने के बाद उनके 3 बच्चों का जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना ने इस परिवार को इसी हफ्ते रिहा कराया था। दक्षिणी सूडान सीमा के पास उत्तरी केन्या के एक स्कूल पर हुए हमले में 5 छात्रों और 1 सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। लोकीचोगियो के स्कूल पर 3 हमलावरों ने हमला किया, जिनमें एक पूर्व छात्र भी शामिल था। स्कूल के प्राध्यापक ने कहा कि छात्र को एक सहपाठी से लड़ाई के बाद घर वापस भेज दिया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है। नंबर एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। जिन लोगों ने हमारा विषय नहीं सुना उनके लिए फिर से विषय कि क्या दिल्ली में पटाखों पर, यानी कि दिल्ली NCR में पटाखे पर पाबंदी लगाने से प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी, आखिरकार अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुमिता रॉय चौधरी, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड स्टडीज़ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिरकार दिल्ली NCR में पटाखों पर पाबंदी से क्या वाकई जो प्रदूषण की समस्या है, जो तर्क दिया जा रहा है, क्या खत्म हो जाएगी?
देखिए, पटाखों से जो प्रदूषण होती है इसको ज़रा हमें समझना चाहिए। इसको हम एपिसोडिक कहते हैं, जो लगातार नहीं होता, पूरी साल नहीं होती, ये कुछ चुन समय के लिए हम पटाखे जलाते हैं,
3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए,
पर ये जो कुछ दिनों के लिए भी जो हम जलाते हैं, इससे भी जो जन सेहत पर उसके जो असर होती है वो बहुत ही गंभीर, और ये लोगों को समझना होगा। और एक और बहुत बड़ी बात है कि आज पाबंदी की बात इसीलिए आ रही है क्योंकि प्रदूषण की मात्रा दिल्ली और NCR में और पूरी नॉर्थ इन इंडिया में इतनी इस मात्रा तक पहुंच गई है कि और प्रदूषण के लिए कोई जगह बचा ही नहीं है। और इस माहौल में अगर आप जो पीड़ित हैं, जिनकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं,
दमे के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं,
बिल्कुल हार्ट के
सांस लेने में दिक्कत,
बिल्कुल है, और हार्ट के मरीज हैं, इनके लिए तो ये जब गैस चेंबर बन जाता है तो ये तो आप उनको कह रहे हैं कि बस आप मरने के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए आप तैयार हो जाइए।
लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली तो वैसे भी गैस चेंबर है, आनंद विहार का जो इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण साल भर रहता है, और जो प्रदूषण की जो मात्रा है, जो स्तर है, उसमें सिर्फ पटाखों का धुआं ही नहीं है, उसमें धूल के कण हैं, उसमें मतलब जो कूड़ा जलाया जाता है जिस पर पाबंदी है, वो सारी चीज़ें मिलकर एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं।
क्योंकि ये बात सच है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से इस साल एक और बहुत बड़ा एक निर्देश आया है, और वो है कि अब 17 अक्टूबर से दिल्ली में, जिसे हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन प्रदूषण, जो डेली प्रदूषण की मात्रा होती है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा, और उसके लिए एक्शन को नोटिफाई भी वो कर चुके हैं कि जब बहुत पुअर या वेरी पुअर या सीवियर इमरजेंसी होती है, तब हर सोर्सेज, जितने भी प्रदूषण के कारण हैं, उन सारे कारणों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कदम आपको उठाना होगा।
और उसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने पहला कदम उठा लिया है,
ये तो अलग है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में भी ये कहा गया है कि जब प्रदूषण की मात्रा सीवियर और इमरजेंसी पे होगा तब और वेरी पुअर कैटेगरी में होगा तब पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो इसका ये इसको समझना होगा लोगों को कि देखिए, अगर प्रदूषण नहीं है शहर में तो आप पटाखे जलाएं, उसे कुछ दिनों के लिए ठीक है, पर जब मात्रा इतनी ख़राब है, इतनी हवा में जब इतना गंध है, तब इस समय आप इस और ये नहीं कर सकते। पर एक और बड़ी बात है, काफ़ी लोगों में ये भी सोच है कि हम तो कुछ घंटों के लिए जलाते हैं, फिर हवा साफ़ हो जाती है, हवा आती है, वो रोक ले जाती है, पर वो ये नहीं समझते कि ये जो इतने हजारों लाखों टन जो जलते हैं और उससे जो ये टॉक्सिक केमिकल्स निकलती हैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, सारी गैसें,
वो तो गैसेस है जो हवा में आती हैं, पर ये जो केमिकल्स हैं जैसे लेड है, स्ट्रोनियम है, ये सारे कार्सिनोजेनिक हैं, ये फिर हवा से हटकर वो ज़मीन में गिरते हैं, पौधों में गिरते हैं, हमारे फसल में गिरते हैं, और फिर वो फूड चेन के जरिए हमारे शरीर में फिर से प्रवेश करते हैं।
मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम में लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर। उत्तर प्रदेश से एक श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हाँ, नमस्कार सर जी।
नमस्कार, नमस्कार, नाम बताइए।
जी हाँ, सीताराम राय, ग्राम मक्सर जिला।
सीताराम जी, सीताराम जी, बहुत दिन बाद आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा, अपनी बात रखिए।
जी हाँ, हमारा यही कहना है सर कि कोर्ट जो भी आदेश देती है वो पालन क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कभी पॉलिथीन पर आज से 3 बरस पहले ही निर्णय लिया गया ये तो नरक बना रहे हैं सब जो। सबसे दुख की बात यह है कि कोई खुशी में लाखों लोग मर रहे हैं, कोई अस्थमा का मरीज है, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है। अगर कोई फैक्ट्री रहती, कोई कल कारखाना रहता तो चलो भाई कुछ लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब आदमी ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर किसके लिए ये सब होगा। हमारा सर एक नाती है, खजूरी खास में रहता है, उसी दिल्ली में, अभी 17 वर्ष उम्र है और इतना वो परेशान है कि हम लोग चेक करा के कुछ निकलता ही नहीं, वही क्या तो एलर्जी है।
जी जी सीताराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही पते की बात कही, और मेरे ख्याल से अनुविता आप इनकी जो बात है इससे पूरी तरह से सहमत होंगी।
बिल्कुल, एक तरफ हम निर्देश देते हैं, कानून बनाते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और पर्यावरण में सुधार नहीं आता। और ये जो मरीज़ हैं आज, अगर हम ये हमें समझना होगा, सारे डॉक्टर्स आज NCR दिल्ली में यही कह रहे हैं कि जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं आज इस शहर में और कई, और ये इन्होंने अभी एलर्जी के जो जिक्र की हैं, प्रदूषण में जो एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो और भी बिगड़ जाते हैं। और पूरी सर्दियां तो बस आपको नेबुलाइज़र और ये सब जो इमीडिएट रिलीफ ट्रीटमेंट से ही आप बीत जाता है। और एक जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, आप यहाँ पे तो जो गरीब हैं आप उनकी हालत सोचिए, आज ये सब जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट है, ये जो हेल्थ कॉस्ट है।
लेकिन क्या उन लोगों की हालत नहीं सोचनी चाहिए जिन्होंने की पटाखे खरीदे, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने की दुकानें लगानी थी, जिनको की लाइसेंस मिला हुआ था, उनके लाइसेंस अचानक रद्द हो गए और लाखों और करोड़ों रुपया उन्होंने निवेश किया, पटाखे खरीदे लेकिन बेच नहीं पाएंगे,
देखिए
उनका क्या?
सच ये देखिए, ये तो बात हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि आपको बैलेंस भी करना होगा, एक लाइवलीहुड का इशू है। पर यहाँ पे ये भी हम कहेंगे कि जो ये बैन का जो निर्देश आया था सुप्रीम कोर्ट से, ये एक साल पहले आया था, ऐसा नहीं है कि एकदम से बैन अभी लगा है। बीच में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, क्योंकि पिछले एक साल में देखा गया था
अस्थाई लाइसेंस थे,
इनके साथ लाइसेंस थे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी दिया था सुप्रीम कोर्ट, जो 12 सितंबर का जो अगर आप जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर आप देखें, उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर बैन इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल है तो हम एक स्ट्रैटेजी देते हैं कि आप फेज आउट कीजिए, कि आज अगर इस शहर में 50 लाख टन की जो पटाखे हैं उसको फ्रीज कर दीजिए और फिर उसके 50% कम आप करते जाइए हर साल।
लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो शिवकाशी, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शिवकाशी, जहां सारे पटाखे बनते हैं, ये तो सब बंद हो जाएंगे।
देखिए, अब इसके कुछ हद तक तो ये सीमित होगा, क्योंकि हमें ये भी सोचना होगा कि आज ये जो देश है जहाँ पे बिलियन पॉपुलेशन है, और बिलियन पॉपुलेशन में अगर हर घर पे इतने पटाखे जलेंगे तो इससे क्या होने वाला है। अगर देखिए पॉलिसी मैसेज अगर ठीक है, अगर ये बात निकल के आती है कि देखिए हमें ये कम करना होगा, सीमित करना होगा, तो इंडस्ट्री भी उसी तरीके से अपने आप रिस्ट्रक्चर भी हो जाएगी। पर उसके लिए आप उसको एक ठीक से एक रोड मैप दीजिए।
रोड मैप की जरूरत है, उसकी उस पर पालन किए जाने की जरूरत है। एक श्रोता को मैं शामिल कर रहा हूँ, ये बताइए कि नाम क्या है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी बंधु, नाम बताएं।
जी मैं पठान खान गज्जी बोल रहा हूँ, कितनौरिया बाड़ में, राजस्थान से।
पठान खान साहब जी, अपनी बात रखें।
जी मेरी राय ये है कि जो लोग कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का जो फैसला, उन पे गौर क्यों नहीं करते? ये तो पटाखे हैं जो, ये तो जान के लिए खतरा है। जैसे हमारे यहाँ पे भीड़भाड़ या कहीं पे ये पटाखे फूटता है तो या कचरे जल जाता है या किसी जान ले लेता है, इसमें क्या फायदा है?
जी तो बाड़मेर से जी पठान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनको इनका कहना है हमने सुन लिया, और ये भी लगभग वही बात कह रहे हैं कि जब जिंदगी ही नहीं तो फिर आगे आगे क्या। लेकिन एक विनय पांडे हैं जो कि फेसबुक पर इसी कार्यक्रम के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और वो जिक्र कर रहे हैं चेतन भगत की एक टिप्पणी का, जो कि राइटर हैं। उनके मुताबिक दिवाली पर पटाखे प्रतिबंध करना ऐसा है कि मानो क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री आपने बंद कर दी, बकरीद पर बकरे पर प्रतिबंध लगा दिया। असल में प्रतिबंध की बजाय नियमन होना चाहिए, यानी कि एक प्रोसेस के तरीके से उसको किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही परंपराओं का सम्मान भी होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा सुनवाई की तो कहा कि हम इस बात से बहुत आहत हैं कि इसमें धर्म जोड़ दिया गया।
बिल्कुल,
और यही बात कह रहे हैं कि परंपराओं का सम्मान भी किया जाना चाहिए, साथ में एक स्ट्रेटजी के तहत किया जाना चाहिए।
देखिए ये बात बहुत ठीक है कि हमें परंपरा की सम्मान करनी चाहिए, पर परंपरा का मतलब ये नहीं कि पटाखे जलाएं। देखिए पटाखे और परंपरा एक चीज नहीं है।
प्रकाश पर्व है तो दिए जलाइए।
बिल्कुल, दिए जलाएं, इतना जो पूजा का जो परंपरा है आप पूजा कीजिए, जश्न मनाएं, जो कितने तरीके के जो होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, एंजॉय करने के कई तरीके होते हैं, ये सब कुछ आप करिए, तो सब परंपरा है। पर इसमें ये आप धुआं क्यों निकालें, ये जो धुआं, जो ये जहरीला धुआं है, इसके साथ हम परंपरा को क्यों जोड़ रहे हैं, और यही गलत बात है।
क्या ये इसी तरह की बात नहीं है कि जैसे दुर्गा पूजा पर या गणेश विसर्जन पर कहा गया कि भाई आप जो है वो प्लास्टिक पेंट से बने हुए गणेश जी का विसर्जन ना करें, क्योंकि वो तो गलते ही नहीं है, इससे हमारी नदियां प्रदूषित हैं, पानी प्रदूषित है,
ये लगभग एक ही
जैसी, बिल्कुल एक ही जैसी बात है मोटे तौर पर।
बिल्कुल, और हम यही कहेंगे क्योंकि अभी और आज ये चर्चा हो रही है, इसी कारण अगर आप देखेंगे कि जो बंगाल में, दिल्ली में भी हमने देखा है कि अब जो मूर्तियां बनती हैं वहाँ पे वो वेजिटेटिव डाइज लगा रहे हैं, वो केमिकल पेंट से वो हट रहे हैं। तो ये चर्चा होना तो बहुत ज़रूरी है कि परंपरा के नाम से अगर हम जहर खोलते हैं हमारे पानी में और हवा में, ये तो बहुत गलत बात है।
जी, एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ कार्यक्रम में। जी नाम बताएं और बंधु कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं अशोक कुमार, डिस्ट्रिक्ट मऊ से बोल रहा हूँ सर।
अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मऊ से बोल रहे हैं जी, आजमगढ़ के पास।
जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अगर सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है इन पटाखों के पीछे?
बहुत सही सवाल है, और कुछ कहेंगे
सर? ये कहूंगा कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पे कोई कार्रवाई हो।
आखिरकार जिम्मेदार कौन है? मऊ से हमारे जो श्रोता हैं,
देखिए
सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, कार्यप्रणालियां जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घालमेल तो है।
देखिए दिल्ली में ये चर्चा, ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 2005 पे आया था वो कानून और नियम के बारे में था। वो था कि आप जो पटाखे जलाते हैं उसको सीमित करें, उसके लिए नियम बनाएं, ताकि उसके जो समय है उसको नियंत्रित करें कि शाम को 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, और जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन इलाकों के आसपास आप पटाखे ना जलाएं, काफ़ी नियम बनाए गए थे, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और आज 2005 के बाद 2017 में आके जब देखा गया कि ये
कुछ नहीं हो रहा है,
तब इस तरीके के कड़े कदम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
कड़े कदमों की हम बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा कदम लिया, और हम अदालत के आदेश पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक चर्चा का मुद्दा रख रहे हैं। भाई यहाँ तो भाई पटाखों पर प्रतिबंध लग गया, दिल्ली NCR जो कि वैसे भी बहुत पीड़ित है, और कुछ दिनों पहले इतना स्मॉग था पिछले साल की अगर आप बात करें कि सांस लेना दूभर था, और ये स्थिति जो है वो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र चीन है वहाँ पर यही हालत थी, और लोग मास्क लगा के चल रहे थे, और कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी यही हमने देखा, स्मॉग इतना ज़्यादा था, लोग मास्क लगा के चल रहे थे, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो एक तरफ तो ये मुद्दा है, और दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में किसान जो है अपनी फसलें जला रहे हैं, पुआल जलना शुरू हो गया है, और उसका भी तर्क यही है कि वो जो धुआं है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आएगा, उस पर क्यों बात?
देखिए ये दिवाली के संदर्भ में हमें यही बात को हमें समझना होगा कि दिवाली तब होती है जब जाड़े का समय की शुरुआत होती है, और इसी वक्त पंजाब, हरियाणा जहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, फसल कटती है, नई फसल की समय आ गई है। अब फसल काट के नई फसल लगाने में जो के बीच में जो समय है ये इतना कम समय है कि अगर जो किसान हैं उनके पास अगर और कोई उपाय या साधन नहीं है मौजूद कि किस तरीके से, तो वो जला देते हैं। अब पिछले 2-3 सालों से ये बात पर चर्चा हो रही है कि हम किस तरीके के सोल्यूशंस उसके लिए हम बनाएं, और इसके लिए दो तरीके के सॉल्यूशंस की बात हो रही है। एक है आप किसानों को सब्सिडाइज्ड मशीन दे जिससे वो जो स्ट्रॉ है उसको वो मिट्टी के साथ मिला के फर्टिलाइजर बना दे, उसकी मल्चिंग करें, और उस दूसरी तरफ बात हो रही है कि वो स्ट्रॉ को आप इकट्ठा करके लेके कहीं या तो पावर जनरेशन के लिए उसको इस्तेमाल करें या और भी कई तरीके के चीज़ें आप उनसे बना सके, उसको रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। पर ये सब करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है, जो पैसा जो आपको इन्वेस्ट करना होगा, फार्मर्स को जो इंसेंटिव देनी होगी, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके लिए जो एक जो उनको इम्प्लीमेंटेशन जो करना था वो हो रहा है, बहुत कम पड़ रहा है, और इस यही कारण है जो अभी भी हम
ये भाई किसान अपनी अगली फसल देखेगा कि बैठ के पुआल को बैठ के सजोएगा,
एग्जैक्टली
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं,
राइट। तो यहाँ पे सरकार के तरफ से उनको और भी
प्रोत्साहन की जरूरत है।
बिल्कुल
कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो सर, मैं लालू यादव बोल रहा हूँ, बरेली जनपद से।
लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री?
नहीं, हम तो छात्र हैं ना।
अच्छा, छात्र हैं।
हाँ, प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं।
जी 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 लालू जी, अपनी बात रखें आप।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार बीबीसी पे लगाया है, बीबीसी लग गया
और फोन आपका लग गया।
हाँ, लेकिन ये प्रदूषण होता ही है, मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हर देश में भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध ज्यादा से ज्यादा हो कि प्रदूषण ना हो। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों होते हैं इससे।
तो क्या किया जाना चाहिए?
तो इसके लिए आप मतलब जैसे इसके बंद करना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए पटाखा वगैरह।
जी लालू जी, आप कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पहली बार फ़ोन लगाया और फ़ोन लग भी गया और ये कार्यक्रम आप सुन भी रहे थे। इनके ये जो कहना चाहते हैं कि भाई प्रतिबंध तो किसी ना किसी तरह, प्रदूषण हमें कम करना चाहिए। एक और कार्यक्रम को कार्यक्रम में श्रोता को शामिल करना चाहता हूँ मैं। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, जोधपुर जिले से अशोक विश्नोई बोल रहा हूँ सर।
जोधपुर से अशोक जी बोल रहे हैं?
हाँ जी।
हाँ अशोक जी, अपनी बात रखिए।
हाँ जी, इसमें ऐसा है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर ये ग्वार के चारा होता है, इसको कहीं पर तो गौएं मर रही है, इसको चारे के रूप में भी काम में लिया जा सकता है सर। इसमें प्रदूषण करने की क्या हो सकता है सर? इसमें सरकार कोई योगदान कृषकों को करके इसमें कोई समाधान हो सकता है सर?
ये देखिए, उसी जो चर्चा सुन रहे थे उसी का इन्होंने आगे एक स्पष्टीकरण दिया और बताया कि क्या सरकार कर सकती है। इसको चारे के रूप में बनाया जा सकता है, गायों को दिया जा सकता है और या जो भी पशुपालन में काम कर रहे हैं उनको दिया जा सकता है। एक मुनिंद्र हैं जो कि फेसबुक पर एक टिप्पणी लिख रहे हैं कि इस प्रतिबंध से खत्म तो नहीं होगी प्रदूषण की समस्या, लेकिन कम जरूर हो जाएगी। पटाखों पर रोक उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये तो एक टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी नीरज कुमार झा हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी से ज़्यादा ज़रूरी प्रदूषण के अन्य कारणों जैसे गाड़ियों की तादाद आप तय कर दें, है ना, जो एसी से पर्यावरण पर जो असर पड़ता है उसको, उसके उपाय बताएं आप। लोगों को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक धर्म के त्यौहार को टारगेट करना। अगर कैसा ऐसा होगा तो सवाल उठेंगे ही।
देखिए,
आधी बात तो ये कह रहे हैं कि भाई जागरूक आप करें। आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में जागरूकता नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और मतलब प्रतिबंध आपको जागरूक नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा आपको वो कर देते हैं।
पर देखिए, आप ये भी सोचिए, क्योंकि ये दिवाली में पटाखों की जो मुद्दा है ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 सालों से, और तब यही था फोकस, यही था कि हम लोगों को जागरूक करें और ज़्यादातर बच्चों को जागरूक करें। और इसीलिए कई बड़े पैमाने पर, जो अगर आप देखेंगे स्कूलों में काफ़ी कैंपेन्स किए गए हैं ताकि बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि वो पटाखे ना
नहीं। ये बात, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जिस स्कूल में जाती है वहाँ पर पिछले 4 साल से मेरी बेटी पटाखे नहीं खरीदती और वो कहती है कि से नो टू क्रैकर्स।
एग्जैक्टली।
और वहाँ पर मतलब बाकायदा बच्चों को बताया जा रहा है कि आप ये करें, ये ना करें, आप दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, क्या दिक्कत है, त्यौहार है, दिए प्रकाश का पर्व है, उसको उस तरह से मनाए। तो जागरूकता बच्चों के लेवल पे तो आ रही है, लेकिन ये जो बड़े हैं, बड़े कब सुधरेंगे, बड़े कब समझेंगे?
और ये यही बात है जो बड़े नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए ये धर्म की जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बढ़ेगी अगर ये समझ बढ़ेगी कि पटाखों के कारण जन सेहत के ऊपर उसका क्या असर होता है, तो बड़े भी फिर समझेंगे और ये बोलेंगे कि धर्म के साथ इसको जोड़ना कितना गलत है।
और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है।
बिल्कुल।
उनके जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि लोगों ने जो है इसको जोड़ के देखा। हाँ। है कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ। नाम बताए, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार,
हम प्रीतम सिंह बोल रहे हैं सीतापुर जिले से।
सीतापुर से, उत्तर प्रदेश से प्रीतम सिंह जी, अपनी बात रखिए।
और ये जो किसानों की अभी बात आई थी, किसानों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या करें किसान? हाँ। जलाएं ना।
वही कह रहे थे हम भी।
हाँ। हम लोग मजबूर है, अभी गेहूँ बहुत बोना है जल्दी, तो इतनी जल्दी ये जो पराली सड़ती नहीं है।
अच्छा, ये बताइए कि ये जो मशीनें आती हैं जो कि कटाई के काम में आती हैं, और इसकी लागत क्या बहुत ज्यादा है क्या, पुआल को काटने का जो काम करती है, जिससे कि आप इसको बदल सकते हैं, खाद बना सकते हैं?
हाँ जी, हाँ जी, वो काट तो देती है पर वो सड़ता फिर भी नहीं है।
हाँ,
उसको या तो जलाओ या खेत से हटाओ।
नहीं तो खेत से हटाने के बाद भी तो कोई विकल्प होगा ना उसको, उसके लिए भी कई मशीनें आ गई हैं जो कि चारे में बदल देती हैं उनको।
हाँ, वो सब, वो तो सब फिर पैरा उठाया जाए ना खेत से, तभी चारे में बदलेगा। तो इतना टाइम नहीं होता था और वो छोटा छोटा कर देती है कंप्लेन, वो उठा नहीं मिलता।
हाँ मतलब ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं इस पूरी प्रक्रिया में।
हाँ जी बहुत दिक्कत
है। और इस चक्कर में मजबूरी में इसको जलाना पड़ता है।
हाँ जी मजबूरी में नहीं तो अगर इसको खेत में ये सड़ जाए फिर तो खाद का काम दे फिर और फायदा हो सकता है।
हाँ लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है, अगली फसल अगर आपको बोनी है तो समय कहाँ है?
हाँ जी समय नहीं है, बिल्कुल यही बात है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए समय कम है और उसके साथ साथ अगर हम उनको ये साधन दें और किसानों में अगर ये जागरूकता लाएं कि अगर ये खाद के जरिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनकी जो फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है वो 20% तक कम हो जाएगा। फायदा है इससे,
फायदा तो है लेकिन पर, समय है,
पर
उस, है।
बिल्कुल, पर वो साधन को बनाना बहुत जरूरी है।
जागरूक भी आप हो गए लेकिन हाँ, संसाधन नहीं तब भी कोई फायदा नहीं।
बिल्कुल।
अब जैसे ये जो हमारे श्रोता बोल रहे थे शायद खुद किसान हैं
हाँ,
और ये कह रहे हैं कि इनको मालूम भी है लेकिन लेकिन विकल्प नहीं है इनके पास कि करें तो करें क्या भाई
हाँ,
आपका पुआल पड़ा हुआ है तो जलाना आपकी मजबूरी है क्योंकि अगली फसल आप कैसे बोएंगे। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो।
हाँ सर बोल रहे।
जी हाँ बोले, आप नाम बताएं।
जी सर मैं गाजीपुर जिले से मिथिलेश राय बोल रहा हूँ।
गाजीपुर से मिथिलेश जी अपनी बात रखे आप।
सर ये ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 2 या 3 घंटे पटाखा छोड़े, लेकिन सर जब 1 जनवरी को पूरा देश और जितने अंग्रेज लोग हैं छोड़ते हैं एक साथ पटाखा तो क्या उन लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है?
वैसे मतलब बात में आपकी दम है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लेकिन बहुत अंतर है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण में और लंदन के प्रदूषण में, बहुत अंतर है।
और अंतर तो हाँ वायु प्रदूषण की मात्रा में अंतर है पर उसके साथ साथ कुछ और भी अंतर हैं, जैसे जैसे लंदन में उन्होंने कहा और US में जो उनकी July 4th पे जो वो करते हैं वहाँ पे पटाखे काफ़ी सीमित रूप से जलाए जाते हैं और वहाँ पे एक जो एक तरीका है कम्युनिटी एक्शन, उसका मतलब ये हुआ कि हर घर पे आप ना जलाएं पर इकट्ठा होके कहीं 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 तो यह स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है कि एक जगह पे आए और वहाँ पे आतिशबाजी हो।
देखते हैं जैसे ओलंपिक का आयोजन हुआ या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े
हाँ,
आयोजन होते हैं
हाँ,
भीषण पटाखे होते हैं और क्या शानदार खूबसूरत आतिशबाजी होती है,
पर वो हर जगह नहीं होती और हर घर पे नहीं होता और वहाँ पे बहुत
जो चित्र आते हैं वो बुर्ज खलीफा का ही फोटो आएगा
जी,
है ना, वो सिडनी का ही फोटो आएगा, है ना, उसी ब्रिज का फोटो आएगा
और वहाँ पे तो बहुत कानून बहुत सख्त है
हाँ,
जो खरीदना और ये जलाना इतना आसानी से आप वो नहीं कर सकते,
मतलब नियंत्रित तरीके से
बहुत
वो होता
नियंत्रित है।
कम समय है, एक श्रोता को और शामिल करना चाहता हूँ। जी नमस्कार, अपनी बात रखें संक्षेप में, समय कम है।
हाँ कहना ये है कि प्रदूषण,
नाम तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए।
रणविजय कुमार।
हाँ रणविजय जी अपनी बात रखिए।
जी सर हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं, यहाँ भी बच्चे लोग पटाखा छोड़ते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मैं टीवी पर देखता हूँ कि दिल्ली में तो सांस लेना और मुश्किल हो जाता है, इतना धुआं सा फैल जाता है, इस पर रोक होनी चाहिए सर।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी। आखिरी टिप्पणी लेना
चाहता हूं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस शहर में हम सबको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हर घंटा यहाँ पे एक मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण और हर तीसरे बच्चे के जो फेफड़े हैं उसकी क्षमता कम हो चुकी है और ये हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ बता रहे हैं। जब ऐसी हालत है यहाँ पे तो कोई जगह बचा ही नहीं है कि हम पटाखे और उसके साथ साथ ये जो कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स हम जो ला रहे हमारे वातावरण में ये तो बद हमें बंद करना होगा, सीमित करना होगा। जश्न मनाएं, परंपरा को मनाएं, पूजा करें, दिया जलाएं और बहुत जो हम शुभकामनाएं जो हम करते हैं उसकी फेस्टिवल को आप एंजॉय करें।
क्या यही सोच कर प्रदूषण को सोच कर ही ये गाने लिखे गए, सीने में जलन आंखों में धुआं और तूफान सा क्यों है, शायद लगता है कुछ सोच मतलब आंखों में जलन भी है
तो
शायद कुछ यही सोचा होगा। फिलहाल अनुमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में अब वक्त नहीं है कि हम अपने श्रोताओं को और शामिल कर पाएंगे लेकिन वो तमाम श्रोता जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए उनका शुक्रिया, जो शामिल नहीं हो पाए उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को शाकिर आलम के साथ विदा दें और इस दौरान bbchindi.com पर आते रहें। नमस्कार।